ये आकाशवाणी दिल्ली है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों के लिए महिला सम्मान और संजीवनी योजना का पंजीकरण कल से शुरू करने की घोषणा की। भाजपा सांसद रामवीर सिंह भदौड़ी ने मोलड़बंद एक्सटेंशन से फरीदाबाद सेक्टर 37 को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कई इलाकों में पीने के पानी और विद्युत आपूर्ति में कमी का मुद्दा उठाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 417 दर्ज किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए कल से पंजीकरण शुरू करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आदर्शी भी उपस्थित रहीं। श्री केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की टीम घर घर जाकर इन दोनों योजनाओं के लिए पंजीकरण करेगी।
अब आम आदमी पार्टी की सरकार आपका इलाज कराएगी। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी कल से चालू होगा, तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी।
उधर भारतीय जनता पार्टी ने आज आम आदमी पार्टी द्वारा महिला सम्मान और संजीवनी योजना को लेकर किए गए दावों को चुनावी जुमला बताया। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2022 में पंजाब की महिलाओं के खातों में पैसे देने का वायदा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सुश्री स्वराज ने केजरीवाल पर संजीवनी योजना के नाम पर वोट बटोरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ एक छलावा है।
मैं पूछना चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? दिल्ली की महिलाओं को गुमराह मत करिए। पंजाब की बहनें अभी भी 1 रुपए के लिए तरस रही हैं। आज तक उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। दिल्ली की बहनों को क्यों झूठ आप बोल रहे हैं?
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में पिछले 10 वर्ष से सत्ता में है, लेकिन उसने दिल्ली के लोगों के विकास के लिए काम नहीं किया है। नई दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि दिल्ली के लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए कौन काम कर रहा है और कौन नहीं।
दिल्ली की जनता बड़ा स्पष्ट तौर पर जानती है कि दिल्ली के भलाई के लिए कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा है और दिल्ली भी बढ़ रहा है। और दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पानी का दिक्कत हो, नाली का दिक्कत हो, सड़क का दिक्कत हो, उन समस्या पर दिल्ली के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे।
श्री चौधरी ने कहा कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी नेता पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या से मिलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पूर्वांचल के लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भदौड़ी ने आज मोलड़बंद एक्सटेंशन से फरीदाबाद सेक्टर 37 को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। श्री भदौड़ी ने बताया कि इस फुटओवर ब्रिज के निर्माण पर लगभग 8 करोड़ रूपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण के बाद मोलड़बंद विस्तार से सीधे फरीदाबाद पहुंचना संभव हो जाएगा। इसके अलावा श्री भदौड़ी ने दक्षिणी दिल्ली के असोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और खरक गांव में विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्डिनल्स, बिशप और चर्च के मुख्य सदस्यों सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री देश के कैथोलिक चर्च के मुख्यालयों के इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।
रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को शीर्ष प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की वचनबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। देश भर से चुने गए नवनियुक्त युवाओं को गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाएं विभाग सहित विभिन्न मंत्रालय और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी की कमी, विद्युत आपूर्ति न होने और सीवरों के खस्ताहाल का मुद्दा उठाया। श्री सक्सेना ने बताया कि उन्होंने स्थानीय निवासियों के अनुरोध के बाद दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापसहेड़ा के सांसद रामवीर सिंह भिदौड़ी के साथ दौरा किया था, जहां उन्हें लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि राजधानी में लोगों के दयनीय जीवन को देखना बेहद निराशाजनक और परेशान करने वाला है। इस दौरान उपराज्यपाल ने अधिकारियों को इन इलाकों के मुद्दों को तत्काल हल करने का सुझाव दिया। वहीं उपराज्यपाल के दौरे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने वहां मूल सुविधाओं के अभाव का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शहर की हर समस्या का समाधान करेगी। दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर नागरिकों की समस्याओं को जानने के लिए उनकी सराहना की। श्री यादव ने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल गरीबों के हकों और अधिकारों की बात करेंगे तो दिल्ली की जनता को आगामी विधानसभा चुनावों में अपने मत का निर्णय लेने में आसानी होगी। दिल्ली देहात के मंगोलपुर कला गांव में आज 360 गांवों के लोगों की महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत की अध्यक्षता पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने की। उन्होंने दिल्ली के गांवों के मुद्दे पर सरकार की उपेक्षा की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली के गांवों के अधिकारियों के लिए काम करने वालों को ही आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों का समर्थन मिलेगा।
1.5 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं और हमने जगह जगह पंचायत करी। कुछ काम हमारे छोटे हुए लेकिन जो हमारी प्रमुख समस्या है उनका समाधान आज तक नहीं हुआ। तो आज पिछले 2 महीने से हमने गांव देहात बचाओ यात्रा शुरुआत की हुई थी और लगभग 360 गांव ने आगामी चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया था। अब सारे गांव कंप्लीट हो गए थे तो आज सभी गांव को यहां बुलाया है और आगे की रणनीति किस तरीके से इस आंदोलन को चलाया जाए, हमारा एक ही मत है कि भाई हमारी समस्याओं का जो समाधान करेगा हम उसका स्वागत करेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कृषि ग्रामीण विकास की धुरी है और जब तक ग्रामीण परिदृश्य नहीं बदलता तब तक देश विकसित नहीं बन सकता। नई दिल्ली में आज चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 विजेताओं से बातचीत करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल तभी आगे बढ़ सकती है जब किसान और उनके परिवार विपणन मूल्य संवर्धन में लगे हों और क्लस्टर आत्मनिर्भर बन रहे हों। उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण विकास, किसानों के कल्याण और समावेशी विकास के प्रति चौधरी चरण सिंह के अथक समर्पण को रेखांकित करते हुए उनकी असाधारण विरासत की सराहना की। भारत की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जापान तथा जर्मनी को पछाड़कर ये 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल के जवानों के साथ नई दिल्ली में रविवार फिट इंडिया साइकिल अभियान में हिस्सा लिया। श्री मांडविया ने जवानों के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रायसीना हिल तक साइकिल चलाई। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि पूरा देश स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश भर में 1100 से ज्यादा स्थानों पर आयोजित किया गया है। श्री मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना सबसे अच्छा व्यायाम है, इससे लोग स्वस्थ रहते हैं और ये प्रदूषण के समाधान का भी कारगर उपाय है।
आज संडे ऑन साइकिल के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज भी है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश के नागरिक को फिट रहना आवश्यक है। फिट नागरिक होगा तो स्वस्थ समाज होगा और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।
श्री मांडविया ने इस पहल में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक दावों का विज्ञापन करने के लिए एक कोचिंग संस्थान पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। CCPA ने संस्थान से भ्रामक विज्ञापन तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस प्रशिक्षण संस्थान ने अपने विज्ञापन में दावा किया था कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 में शीर्ष 100 परीक्षार्थियों में से 13 परीक्षार्थी उसके संस्थान से हैं जो कि भ्रामक है। उपभोक्ता कार्य विभाग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 के अवसर पर मंगलवार को जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ करेगा। इन पोर्टलों का उद्देश्य ग्राहकों को गुमराह करने वाले डार्क पैटर्न के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की दक्षता को बढ़ाना है। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित 22वें दिव्य कला मेले का आज समापन हो गया। इस मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी और कारीगरों ने अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन किया।
दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा से भी बड़ी संख्या में आगंतुक दिव्यांगजनों की प्रदर्शनियों को देखने के लिए पहुंचे। मेले के अंतिम दिन हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम, पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी, विभिन्न प्रकार के अचारों, लकड़ी, कश्मीरी वस्त्र और जीवन शैली से जुड़े सामान जैसे स्टॉलों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। कश्मीरी कपड़ों के स्टॉल लगाने वाले नदीम ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मदद से पहली बार मेले में स्टॉल लगाने का अवसर मिला, जिससे आर्थिक तौर पर उन्हें काफी मदद मिली।
मैं कश्मीर से आया हूँ। मेरा जो अपना प्रोडक्ट है वो कश्मीर आर्ट का है। ये हैंडमेड होता है, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बुलाया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी सेल भी अच्छी हो गई, आगे भी अगर ये करते रहेंगे तो हमें बहुत प्रॉफिट इससे मिलेगा।
वहीं पंजाब की सुखिंदर कौर ने दिव्य कला मेला में दूसरी बार स्टॉल लगाने के लिए मंत्रालय का धन्यवाद किया।
नमस्कार जी, मेरा नाम सुखिंदर कौर है और आज मैं दिव्य कला मेला में बैठी हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस टाइम भी मिला था, बहुत अच्छी सेल हुई थी। छटकारा पंजाबी अचार बनाती हूँ मैं खुद, घर में मेकिंग करती हूँ।
मेले में आगंतुक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों का स्वाद लेते हुए भी नजर आए। मेले में दिव्यांग कलाकारों ने संगीत, नृत्य, मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 417 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 को पार कर गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों के लिए महिला सम्मान और संजीवनी योजना का पंजीकरण कल से शुरू करने की घोषणा की। भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदोड़ी ने मोलड़बंद एक्सटेंशन से फरीदाबाद सेक्टर 37 को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कई इलाकों में पीने के पानी और विद्युत आपूर्ति में कमी का मुद्दा उठाया। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 417 दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।